नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई स्थानों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी। मौसम केंद्र ने अगले 4-5 दिन कई स्थानों पर भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ समापन होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च पैदावार, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त वाली फसलों की 109 किस्में जारी की। ये किस्में 61 फसलों की हैं, जिनमें खेती की 34 और बागवानी की 27 फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधीय पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई किस्मों से कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख किया और कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में भी बात की और कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई है।
हमारे वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया और 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सके। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आज मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। अभियान के तहत जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से 13 अगस्त को तिरंगा मैराथन आयोजित की जाएगी। भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन से निकाली गई रैली का शुभारंभ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया। चुरू में वाहन तिरंगा रैली को जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रवाना किया। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई इंद्रमणि पार्क पहुंची। जैसलमेर में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से तिरंगा रैली निकाली गई। केकड़ी जिला मुख्यालय पर निकाली गई तिरंगा वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। झालावाड़ जिले में भी विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा कि इससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण है।
आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे उस समय जब 75 वर्ष पूरे भी देश की आजादी को, तो ये अभियान तेजी से चला था, हर घर तिरंगा अभियान। इस बार भी ये 3 दिन जोरों से चलने वाला है। पूरे देश में उत्साह का वातावरण बनता है तिरंगा यात्रा से, और अब तो सभी लोग इसको अपना रहे हैं, ये अच्छी बात है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का केंद्र रहा है। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल रही है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों की आभार और अभिनंदन सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने और इसके लिए पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने सहित भीलवाड़ा और जहाजपुर क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए आयोजित आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में हर क्षेत्र और हर वर्ग को सौगातें दी गई हैं। प्रदेश में इन दिनों हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। झुंझुनू के बगड़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगरीय विकास मंत्री झाबड़ सिंह खर्रा ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री खर्रा ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से आगे आने वाले सालों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में बढ़ोतरी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। खासकर पूर्वी राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 38 सेंटीमीटर बारिश करौली में रिकॉर्ड की गई। टोंक में 14, 12 के शाहबाद में 12, दौसा के सीकराय में 11 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। करौली जिले में हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से जल निकासी का काम किया जा रहा है। वहीं बचाव कार्य के लिए SDRF की टीम तैनात की गई है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कल का अवकाश घोषित किया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से समूचे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालय पर कई मकानों के अलावा परकोटा भी ध्वस्त हुआ है। हिंडौन के बाजारों के जलमग्न होने से व्यापारियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं तेज बारिश के चलते जिला मुख्यालय पर एक मकान के ढह जाने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। करौली के पावर हाउस सहित कई कॉलोनियों में जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत केंद्रों पर लोगों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा हिंडौन सिटी में भी SDRF टीम द्वारा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जिले के प्रमुख बांध लबालब हो गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित पांचना बांध से 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
सवाईमाधोपुर में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी रुक रुक कर जारी रहा। शहर के अनेक इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश के कारण रणथंभौर दुर्ग मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं भरतपुर संभाग में तेज बारिश का दौर जारी है। इधर राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बारिश का दौर बना हुआ है। तेज बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चूरू जिले में पिछले 2 दिनों से हुई अच्छी बरसात से किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का मानना है कि इस बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। सिरोही जिले में माउंट आबू सहित कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर आज भी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके असर से अगले 5-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने तथा कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर और दौसा जिलों में भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी जो साइसर बना हुआ है, इस सिस्टम के असर से अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो बना रहेगा। सीकर, झुंझुनू, नागौर और जो चूरू जिले हैं इनमें भी अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए संभावना बनी हुई है। जयपुर, भरतपुर संभाग, इसके अलावा सिकावटी क्षेत्र के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए करौली, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर बना रहेगा।
और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेल संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शकों के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा। वे ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर की मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला होने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्वप्निल कोसाले ने निशानेबाजी में 3रा पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीता। भारत के उभरते हुए पहलवान अमन सहरावत 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 71वां स्थान हासिल किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र ने अगले 4-5 दिन कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ समापन होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।